दिन भर 6 मार्च दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर का चुनाव प्रचार खत्म। क्या कहते हैं इलाके के मतदाता?
जो भी गरीबी को हटाना चाहते हैं उनसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि जिसके पास घर न हो उसको घर दे, जिसके पास रोजगार न हो उसको रोजगार दे, जिसका भी सरकार हो।
मणिपुर में भी दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार संपन्न। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने पहली बार कुछ जुझारूपन दिखाया, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा भारी।
बेशक वापसी तो हुई है, क्योंकि एक वक्त ऐसे था जब लगा जब चौथी विकेट गिरी कि शायद 200 रन बनना भी मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए, लेकिन यहाँ पर लीड हो गई है 126 की।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर का प्रचार थम गया है। दोनों जगह 8 मार्च को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में सातवें और आखिरी दौर में पूर्वांचल की 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, वहीं मणिपुर में दूसरे दौर में 22 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव नतीजों का ऐलान 11 मार्च को होगा। प्रचार थमने से पहले सभी राजनीतिक दल मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश में रहे। दुनिया के कई देशों ने उत्तर कोरिया की ओर से किए गए 4 बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों की निंदा की है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा है कि इनमें से 3 मिसाइलें जापान के उत्तर पश्चिम किनारे के करीब गिरी। उन्होंने इस परीक्षण को बेहद खतरनाक कार्रवाई बताया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने भी परीक्षण पर नाराजगी जाहिर की है। चीन ने परीक्षण की आलोचना तो की है, साथ ही सभी पक्षों से धैर्य रखने को भी कहा है। उत्तर कोरिया ने जानकारी दी है कि वो मलेशिया के राजदूत को देश छोड़ने के लिए कह रहा है। इसके पहले उत्तर कोरिया के राजदूत ने मलेशिया की राजधानी को छोड़ दिया था। उन्हें शनिवार को मलेशिया छोड़ने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया गया था। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई की मौत की जांच को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया है। उत्तर कोरिया के राजदूत ने वापसी के पहले कहा कि मलेशिया की ओर से कड़ी कार्रवाई किए जाने से दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए हैं। इराकी सेना ने मूसल में दजला नदी पर बने एक अहम पुल पर अधिकार हासिल कर लिया है। ये पुल पूर्वी और पश्चिमी मूसल को जोड़ता है। सेना मूसल को इस्लामिक स्टेट से अपने अधिकार में लेने के लिए अभियान चला रही है। 2 हफ्ते पहले शुरू हुए अभियान के दौरान सेना ने दूसरे अहम पुल पर अधिकार हासिल किया है। खबरों के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के लड़ाके सेना से कड़े संघर्ष में जुटे हैं। इराकी सेना के साथ मौजूद वॉल स्ट्रीट जनरल के पत्रकार बेन केसलिंग ने बताया कि आम लोग बड़ी संख्या में शहर छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने बताया, आज इराकी सेना पश्चिमी मूसल के करीब इलाके में और आगे बढ़ी। वहीं सड़कों पर लोगों का आना लगातार जारी है। पूरा परिवार सड़क पर है, इनमें नवजात बच्चे और बुजुर्ग भी हैं। शहर के पश्चिमी हिस्से में भी यही स्थिति है। ये थे बेन केसलिंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री एलान जुपे ने कहा है कि वो अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो फ्रांसवा फियो की जगह ले सकते हैं। फ्रांसवा फियो कई आरोपों में घिरे हैं, हालांकि वो इन आरोपों को गलत बताते रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एलांज ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी को एकजुट करने के लिहाज से उन्हें काफी देर हो चुकी है। उन्होंने कहा, हमारे लिए कैसी अव्यवस्था की स्थिति है। शुरुआती चुनाव के बाद फ्रांसवा फियो के हक में निर्विवाद रूप से नतीजा आया। मैंने तत्काल उन्हें अपना समर्थन दे दिया। उनके सामने पूरा मैदान था। ये थे फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री एलान जुपे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फिलीपींस के पूर्व पुलिस अधिकारी आर्टुगो लास कानियास ने कहा है कि राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे जब मेयर थे तब उनसे जुड़े कथित डेथ स्क्वाड का हिस्सा रहते हुए उन्होंने करीब 200 लोगों की जान ली थी। पहले उन्होंने डुटेर्टे के कहने पर लोगों की जान लेने की बात से इनकार किया था, लेकिन सीनेट के सामने सुनवाई के दौरान उन्होंने अपना बयान बदल दिया। पूर्व पुलिस अधिकारी ने कहा कि पहले उन्हें अपने करीबियों की जान की चिंता थी। राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने इन आरोपों को मनगढ़ंत बताया है। भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में एक 10 साल की बच्ची की कथित बलि देने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बच्ची के शव के हिस्से बीते हफ्ते बेंगलोर के पास बरामद किए गए थे। पुलिस ने बीबीसी को बताया कि बच्ची की जान एक महिला के कहने पर ली गई जिसने एक लकवाग्रस्त व्यक्ति के इलाज का दावा किया था। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे के तीसरे दिन रोहनिया के खुशीपुर में इस चुनाव की अंतिम रैली को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल के सपनों को पूरा करने के लिए आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ यानी 2022 तक सभी को अपना घर दिलाने का संकल्प बीजेपी की सरकार ने लिया है। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के सातवें और अंतिम दौर के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। आइए सीधे चलते हैं बीबीसी संवाददाता विनीत खरे के पास वाराणसी। आप पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश की चुनावी फिजा पर नजर रखे हुए हैं, क्या तस्वीर बनती दिखाई दे रही है?
रेहान, आपने रोहनिया का जिक्र किया, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपना दल जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी की का गठबंधन है वो एक गढ़ है। तो माना जा रहा था कि जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने भाजपा के साथ गठबंधन किया है उनकी स्थिति शायद उतनी अच्छी नहीं दिख रही थी, तो उसको बूस्ट अप करने के लिए ये तीसरा दिन लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की है। बहरहाल, अगर हम दोनों पक्षों की बात करें तो लार्जर पिक्चर में हम देखें तो जो भाजपा की तरफ से पूरा कैंपेन है रेहान, वो नरेंद्र मोदी को क्या का चेहरा है, उनके काम को लेकर केंद्रित है। हर जगह आपको पूर्वांचल में जहाँ पर मैं गया हूँ नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे हैं, हर कैंपर जो पोस्टर्स हैं और जो लोग भी हैं उन्हें स्थानीय उम्मीदवारों का नाम तक शायद उतना पता ना हो, वो नरेंद्र मोदी को नाम के नाम पर अगर कोई वोट दे रहा है तो वो मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। दूसरी तरफ जहाँ अखिलेश और राहुल गांधी के जो गठबंधन है उनकी बात करें तो उनको एक पर्टिकुलर तबका है वो ज़रूर उनको फेवर कर रहा है, लेकिन वो लगातार नरेंद्र मोदी पर हमले कर रहे हैं। जिस तरह से जो डिमोनेटाइजेशन की बात हो या फिर भाजपा के कुछ नेताओं का जो बयान है उसको लेकर जो बात हो उसको लेकर लगातार हमले कर रहे हैं।
विनीत, एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकूंगा। जब ये चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तो अखिलेश यादव और कांग्रेस गठबंधन का एक तरह से अपर हैंड दिखाई दे रहा था, आपको लगता है कि अंतिम समय आते आते ये अपर हैंड अब उतना मजबूत नहीं दिखाई दे रहा?
देखिए, अगर आप एनालिस्ट से बात करें रेहान, तो उनका भी यही कहना है कि शुरुआत में भाजपा ने कमजोर शुरुआत की थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते और एक तरह से जो गठबंधन था और 100 सीटों से ज्यादा जो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दिए, इसे एक तरह से वीकनेस का संकेत माना गया और माना ये जा रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो बाकी के फेसेस रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है, एटलीस्ट उम्मीद के मुताबिक उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रहा है। और जो सपा कांग्रेस से जो उम्मीदें थी शायद आखिरी के फेसेस में उतनी अच्छी नहीं रही हैं, खासकर बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं पोलराइजेशन के, वोट्स के जिस तरह का बयान प्रधानमंत्री का भी आया तो हिंट दिया जा रहा है कि वोट पोलराइजेशन की कोशिश है जमीन पर।
विनीत, संक्षेप में बात करें मायावती बहुजन समाज पार्टी के चांसेस के बारे में।
देखिए, जहां तक मैं बनारस में हूं रेहान, यहां पर बसपा की कोई बात नहीं कर रहा है। यहां जो मुख्य मुकाबला है क्या भाजपा जो वाराणसी शहर की जो तीन प्रमुख सीटें हैं क्या वो बचा पाएगी, खासकर जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार यहाँ पर तीन दिन रुके हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर भाजपा ये सीट हारती है तो जिम्मेदारी किस पर होगी? प्रधानमंत्री फिर क्या बोलेंगे, भाजपा क्या सफाई पेश करेगी, उसका जिक्र यहाँ ज़्यादा हो रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद विनीत खरे, आपका वाराणसी से। विनीत खरे ने ही उस इलाके के कुछ मतदाताओं से बात की, आइए देखते हैं क्या कहना है उनका।
हम इस वक्त हैं बनारस के केदार घाट पर और आज सातवें फेज का जो चुनाव की कैंपेनिंग है वो ख़त्म हो रही है, शाम का वक्त है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम नारायण सहानी है।
नारायण जी, ये जो आज ख़त्म हो रहा है चुनाव कैंपेनिंग, क्या आपको लगता है इस पूरे जो कैंपेनिंग रही है यूपी में पूर्वांचल में 40 सीटों का चुनाव है उसमें आम लोगों की बात हुई है, सिर्फ चेहरों की बात हो रही है कि भाई मोदी को कौन वोट देगा, अखिलेश के लिए कौन वोट देगा या राहुल गांधी के लिए कौन वोट देगा?
यहाँ पे सबसे बड़ी बात पहली है कि बनारस में जितने भी चुनाव के माहौल या 14 का उठा के देख लीजिए या 17 उठाइए, सबसे बड़ी बनारस में लोग को ये हर पार्टी, ये मैं एक पार्टी को नहीं सभी पार्टियाँ कहता हूँ कि जो भी यहाँ पे चुनाव होता है सबसे ज़्यादा होता है कि बाहरी MLA MP सबको बुला लिया जाता है कि बनारस में कन्वेंशन, और सबसे बड़ा करते हैं कि जातिवाद वाली काम करते हैं, अपने जिस कास्ट के होते हैं सांसद या विधायक उनको अदर जगह से बुला के उनको कन्वेंशन के लिए किया जाता है कि आप बनारस में चले जाइए तो आपके समाज के लोग में घुस जाइए, बोलिए कि मुझे ये सब पार्टी ने ये बनाया है, वो पार्टी ने मुझे ये बनाया है। तो इससे क्या होता है कि समीकरण, अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को बुला के ले, आप अगर लड़ रहे हैं तो व्यक्तिगत जो क्षेत्रीय प्रत्याशी वो अपना कन्वेंसिंग करे तो बहुत अच्छा होता है।
जो आपकी जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई हैं?
हम लोग की उम्मीदों से पूरे खरे नहीं उतरे।
ठीक है, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम प्रदीप साहनी है।
प्रदीप जी, आप बताइए कि इस बार चुनाव में सिर्फ चेहरों की बात हो रही है कि जो आम लोगों के मुद्दे हैं उनको भी, उन पे भी बात हुई है?
देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर से जो देश की और जो है कि मालूम लोगों की जो भलाई के हित में हो उसको ही जो है कि चुना जाए तो बेहतर है।
लेकिन आपकी क्या परेशानियां हैं आपके समाज? ये हर कोई यहाँ समाज की बात करता है, बनारस की बात क्यों नहीं करते लोग कि भाई मेरा समाज ये है, मेरा समाज वो, समाज के उठ के आपको लगता है बात होती है यहाँ पे?
नहीं नहीं, होती है, क्यों नहीं होती है, जो है कि जब मुद्दा छिड़ता है तो बात होती है। अब बात ये है कि जो है समाज की बात कर रहे हैं तो समाज के बारे में हम लोग कोई सोचता नहीं है, जो है कि मालूम क्या हो रहा है घाट किनारे, कितने लोग डूबते हैं, हम लोग बचाते हैं, लेकिन हम लोग के बारे में कोई भी जो है कि आज तक ऐसा नहीं आया कि जो है कि ऑफर की इस चीज़ से हम लोग जुड़े। हाँ। हम लोग करें और जो है कि उसका सहयोग पूरा जो है कि पाएं।
हमारा गली पूरे खराब हो रही है, इसका प्रस्ताव कौन रखेगा? रास्ता चलने खाते हम लोग पैदल को इतना प्रस्ताव हम रखे हैं कि हमारा पैदल पूरा रास्ता पूरा खराब कर दिए, खोद खोद कर बेकार कर दिए।
उसका हुआ नहीं है,
कहाँ पर हो रहा है, जहाँ से हुआ ना पत्थर उखाड़ कर रख दे रहे हैं, जहाँ से हुआ सा नाला खोल दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे?
पूरा शहर खुदा हुआ है, हम देख रहे हैं हर जगह
रोड तो वही भी खुदा हुआ था, उसका दबाव छोड़ दीजिए। हमारा गली जो आने जाने का है, मतलब स्कूल पढ़ने बच्चे के लोग को जाना पड़ता है, ओके क्या करेगा आदमी, जो नाला वाला बह रहा है उसके लिए क्या करेंगे हम लोग?
जैसे अभी भी कुछ दिन पहले मैंने 80 पे गया था, इसका चल रहा था क्या नाम है सहारा वाले का, उसमें पूछा गया कि मोदी जी ने घाट बहुत ये करवाए, अगर देश आज़ाद होने के बाद अगर घाट निर्माण हुआ है तो सिर्फ कांग्रेस शासन काल में हुआ है, नर्ता किसी और में हुआ है, या अटल बिहारी थे उस समय भी नहीं हुआ। पहले बार अगर घाट पर निर्माण हुआ था देश आज़ाद होने के बाद 1957 में, उसके बाद 1967 में हुआ, उसके बाद 88 में जब राजीव गांधी ने आया तब ये जितने भी आपको सबसे ज्यादा घाट अगर निर्माण दिखाई देंगे तो वो राजीव गांधी के समय का है।
बाबा आपका क्या नाम है?
मेरा नाम है राजू बाबा।
राजू बाबा बताइए यहाँ पर क्या कुछ बदला है घाट में पिछले सालों में?
देखिए, घाट की जो सफाई चल रही थी वो तो अच्छा चल रही थी, जैसे झाड़ू नहीं लग रहा था पहले, आज झाड़ू 4-5 बार लगता है, जो भी कुछ हो रहा है फिलहाल अभी तक तो सही चल रहा है, आगे देखते हैं होता है क्या। मेरा जन्मभूमि मिर्जापुर से है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है चुनाव के पीरियड आने के पहले सब लोग हाथ जोड़ के कहते हैं बाबा ये करूँगा वो करूँगा वो करूँगा, करता क्या कोई? कुछ भी नहीं, जब तक चुनाव है तब तक कहते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद कोई नहीं जानता मुझे क्या करना है।
जो भी गरीबी को हटाना चाहते हैं उनसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि जिसके पास घर न हो उसको घर दे, जिसके पास रोजगार न हो उसको रोजगार दे, जिसका भी सरकार हो उनसे यही निवेदन है हमारा।
वाराणसी के मतदाताओं से बात कर रहे थे विनीत खरे। मणिपुर विधानसभा के दूसरे दौर के लिए भी चुनाव प्रचार आज थम गया। पहले दौर में 38 सीटों के लिए वोट डाले गए थे, परसों दूसरे दौर में 22 सीटों के लिए मतदान होगा। मैंने अब से थोड़ी देर पहले इम्फाल फोन कर BBC संवाददाता फैसल मोहम्मद अली से संपर्क किया और पूछा कि वहां अब तक चुनाव प्रचार कैसा रहा है।
चुनाव प्रचार में जो आपको दो बातें नजर आती हैं वो तो ये हैं जो कि शायद खास मणिपुर की होती हैं, वो ये हैं कि आपको हर जगह कैंपेन में पुरुष के साथ साथ महिला भी दिखती हैं। अभी तक 38 सीटों पर हो चुका है पहले चरण में, अगले चरण में जो कि 8 तारीख को होगा उसमें जो बाकी जो 22 सीटें बची हुई हैं उस पर होगा। इस बार जो एक और खास बात वो ये नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है वो हर तरफ दिख रहा है काफी जोरों शोर से, और उनके बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह थे यहाँ, राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री, आज भी राम माधव जो पहले RSS के जन के नेता रह चुके हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के बहुत खास बताए जाते हैं, वो यहाँ उन्होंने कैंप कर रखा है एक तरह से और आज भी यहाँ वो मौजूद हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, चूंकि 15 सालों से सत्ता में रही है तो एक एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा रहा है उसके खिलाफ, और जाहिर है कि जिसको आप जानते हैं उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला उठाया, जो कि एक तरह से लग रहा था कि हाँ काम कर रहा है, लेकिन इसी बीच में कुछ दूसरे फैक्टर्स आ गए, जो कि एक ब्लॉकेट से जो शुरू हुआ, आर्थिक ब्लॉकेट जो कि नगा लोगों ने कर रखा है, नगा समूहों ने, और वो पूरा जो है एक नए जिलों को बनाने का है। लेकिन उसमें गलती उनसे ये हो गई है कि जो नया जिलों बनाने के खिलाफ जो उन्होंने अपना एहतजाज शुरू किया है वो नवंबर में ही शुरू कर दिया, जबकि नए जिले जो है वो 7 नए जिले, 9 के अलावा अब 16 जिले हो जाएंगे इसके बाद, वो जो है वो दिसंबर में वो एक तरह से लॉ पास हुआ है। इस बीच में एक जो एकॉर्ड जो नरेंद्र मोदी सरकार ने इन्हें CIN के साथ किया, IM के साथ, उसको लेके ये हो रहा है कि नागालैंड में खासतौर पर मतई जो कि हिंदू है और 7% जनता है उनकी, उनको ये डर है कि नागालैंड मणिपुर का कुछ हिस्सा जो है वो ग्रेटर नागालैंड में जो मांग हो रही है, तो मणिपुर टूट सकता है।
अच्छा ये बताइए, ये जो अखबारों में इश्तेहार से संबंधित कुछ विवाद पैदा हो गया था, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके?
रेहान साहब, इसके बारे में जानकारी यह है कि इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने 8 बड़े अखबारों को नोटिस भेजा था। वो नोटिस इसलिए भेजा गया था कि उन्होंने 3 और 4 तारीख को कुछ इश्तहार छापे थे, जिसमें इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि वो इश्तहार जो है चूंकि इस तारीखों को छापे गए हैं, अगर उस तारीखों को छापना था तो उसके पहले मीडिया सर्टिफिकेशन मणिपुर एक कमेटी बनाई गई थी, उससे अप्रूवल लेना था। मगर एडिटर्स का ये कहना है, जिसमें मेरी अभी थोड़ी देर पहले प्रदीप पंजुबम है, इम्फाल फ्री प्रेस के एडिटर हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो अखबार वालों ने रिप्रेजेंटेशन दिया है इलेक्शन कमीशन के सामने कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने सर्टिफिकेशन दिखाया और कहा कि ये अप्रूव है, ये एड तो हम लोगों ने छापा है। लेकिन उनका ये इल्जाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस एड के लिए अप्रूवल लिया था उस एड के बजाय कोई दूसरा जो है वो एड दे दिया अखबार वालों को और वो छप गया। अब इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों को कहा है कि वो इस मामले पर कार्रवाई करेगी और इस पर जो है वो आगे जो किस तरह का नोटिस या जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी को भेजना है वो भेजा जाएगा।
ये थे इम्फाल गए BBC संवाददाता फैसल मोहम्मद अली।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। उत्तरी कोरिया द्वारा जापान के समुद्र में कुछ मिसाइलें फायर करने से बवाल मच गया है। जापान ने इसका कड़ा विरोध करते हुए इसके खतरे के प्रति लोगों को आगाह किया है, और भी कई देशों ने इसके खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। BBC संवाददाताओं का भेजा विवरण सुना रहे हैं दिलनवाज पाशा।
उत्तर कोरिया के 4 बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है। क्षेत्र में अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं के संयुक्त अभ्यास के समय उत्तर कोरिया ने ये परीक्षण किए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गैंग श्वांग ने सभी पक्षों से संयम बरतने और ऐसा कुछ न करने के लिए कहा है जिससे हालात और खराब हों। गैंग श्वांग ने कहा, उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों को लेकर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत स्पष्ट नियम है। चीन उत्तर कोरिया के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन कर बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण करने के खिलाफ है। चीन ने क्षेत्र में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बड़े स्तर पर हो रहे सैन्य अभ्यास का भी संज्ञान लिया है। मौजूदा हालात में सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कोई भी खींच कर कुछ ऐसा करे जो क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दे। आज सुबह उत्तर कोरिया ने जापानी सागर में 4 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया था। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के मुताबिक 3 मिसाइल टोक्यो के विशेष आर्थिक क्षेत्र के पानी में गिरे हैं। शिंजो आबे ने कहा कि ये उत्तर कोरिया की ओर से नए खतरे का खुला प्रदर्शन है। वहीं दक्षिण कोरिया का कहना है कि ये मिसाइल उत्तर कोरिया और चीन की सीमा के नज़दीक से दागे गए और समुद्र में गिरने से पहले इन्होंने करीब 1,000 किलोमीटर का फासला तय किया। पत्रकारों से बात करते हुए दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चो जून ह्यूक ने इन परीक्षणों की आलोचना की है। उन्होंने कहा, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का खुला और स्पष्ट उल्लंघन है और कोरिया प्रायद्वीप और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर खतरा है। हमारी सरकार इसकी कड़ी निंदा करती है। वहीं दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति ह्वांग क्यो ऑन ने कहा है कि देश को अपनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी होगी। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया के किसी भी प्रकार के मिसाइल या परमाणु परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उत्तर कोरिया ने किस प्रकार की मिसाइलों का परीक्षण किया है। वहीं अमेरिका ने मिसाइल परीक्षणों की आलोचना करते हुए कहा है कि ये परीक्षण उत्तरी अमेरिका के लिए खतरा नहीं है। दक्षिण कोरिया की सेना का कहना है कि वो इन परीक्षणों की जांच कर रही है। उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को धता बताते हुए मिसाइल और परमाणु परीक्षण करता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि हालिया सालों में उत्तर कोरिया की मिसाइल तकनीक में सुधार हुआ है।
उत्तर कोरिया ने जापान सागर में बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया। आज सोमवार है और आज के दिन आप इंतजार करते हैं अपने पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं इंदु पांडे और राजेश जोशी।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और मेरे साथ आज हैं
इंदु पांडे
का भी नमस्कार। और सभी श्रोताओं को अभी अपनी चिट्ठियों का इंतजार होगा, तो एक पोस्ट कार्ड मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ।
जरूर, शुरुआत करते हैं इसी से। तो ये पोस्ट कार्ड है हमारे पास प्रमोद कुमार श्रीवास्तव का। इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है कि ये अध्यक्ष हैं भारतीय रेडियो श्रोता संघ के, और ये हमारे पास चिट्ठी आई है गांव कैथनपुरवा सातनपुरवा जिला अमेठी उत्तर प्रदेश से। और राजेश जी, सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी लिखा है।
इन्होंने मोबाइल नंबर लिखा है और हमारे हर प्रोग्राम के बाद इनका SMS मैसेज आता है जिसमें वो कार्यक्रम की तुरंत समीक्षा कर देते हैं। तो इनको लगता है कि इनकी चिट्ठी शामिल नहीं हो पाती है तो वो पोस्ट कार्ड भी भेजते हैं। प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लिखा क्या है लेकिन इन्होंने
तारीफ तो लिखी है, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि दुनिया जहान का आप ताज़ा अंक ही सुनाया करें, पूर्व में प्रसारित हो चुके दुनिया जहान को ना सुनाया करें तो अच्छा होगा।
ऐसा तो नहीं होता है, हमेशा दुनिया जहान का हर हफ्ते ताज़ा अंक ही सुनाया जाता है। मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता कि कभी पुरानी चीज़ प्रसारित की गई हो। बहरहाल, अगर ऐसा हुआ है तो उसकी कोई ज़रूर कोई कारण कोई वजह रही होगी। लिखते रहिएगा और सुनते रहिएगा, आप तो सजग श्रोताओं में हैं।
चलिए अब बात करते हैं ईमेल की। ये मेल आया है हमारे पास एहसान असगर का, बुल्दाना महाराष्ट्र से।
लिखते हैं
कि अभी जस्ट वुसत सर की डायरी सुनी।
जस्ट अंग्रेजी में लिखा है
जी। लगा था कि हमेशा की तरह फनी टच होगा, पर नहीं। क्या बात कही सर जी आपने, इस दिल को छू लेने वाली रिपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या बात है असगर साहब, आप तो जो जिस भाषा में लिख रहे हैं, हिंदी में टाइप कर रहे हैं, बीच में अंग्रेजी के शब्द आ रहे हैं। हमारे कुछ ही तो श्रोता हैं जो लगातार लिखते हैं और जिनकी हमें ये तक याद हो गया कि वो कहाँ से लिखते हैं और उनका नाम तो खैर याद ही है। धन्यवाद
जी। ये है जीशान नैयर, गाम तरैया, बेगूसराय, बिहार से।
ये भी हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, बहुत शिकायत करते हैं जीशान भाई,
लेकिन आज कोई शिकायत नहीं है।
नहीं, मेरी चिट्ठी शामिल नहीं करते, क्या वजह है, लेकिन बहुत लगातार सुनते हैं हमारे कार्यक्रमों को।
कहते हैं कि समीर आत्मज मिश्र ने रामदत्त त्रिपाठी की कमी खलने नहीं दी। समीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। विवेचना में रेहान फजल साहब ने भारतीय सेना का श्रीलंका के जाफना में ऑपरेशन के बारे में जाना, बहुत अच्छा लगा।
ये उत्तर प्रदेश चुनावों की जो हमारी रिपोर्टिंग हो रही है, समीर आत्मज मिश्र और दूसरे हमारे साथी कर रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं। जरूर आपकी राय शर्माते, बहुत बहुत धन्यवाद और सुनते रहिएगा।
और अगली चिट्ठी है महेंद्र सहारण और इनका पूरा परिवार, सुनीता, मंजू और मुकेश, झलार, श्री गंगानगर, राजस्थान से। कहते हैं राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो
किस चीज के लिए धन्यवाद कह रहे हैं।
हाँ, लिखा है कि आपने जो ब्लॉग लिखा, जंग नहीं गुरमेहर कौर की हिम्मत का जश्न होना चाहिए।
अच्छा, ये bbchindi.com पर मैंने अभी रविवार को एक ब्लॉग छपा था, उसके बारे में कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको पसंद आई मेरी बात, शुक्रिया।
और ये ईमेल आया है अरुण कुमार छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यानी कि 6 मार्च के नमस्कार भारत कार्यक्रम तक उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में जो रिपोर्टिंग समीर आत्मज मिश्र ने, फैजल मोहम्मद अली, जुबैर अहमद, विनीत खरे, सलमान रावी सभी ने की, बहुत ही सच्ची थी।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमको इस तरह की चिट्ठियों की प्रतीक्षा रहती है, जो हमारे काम जो हम करते हैं उसकी समीक्षा करें कि कहाँ अच्छा हुआ कहाँ बुरा हुआ। आपने तारीफ की, हमें बहुत अच्छा लगा, आपकी बात हम अपने संवाददाताओं
तक पहुंचा
देंगे।
शिकायत
तो जरूर बिल्कुल होनी चाहिए, उससे हम घबराते भी नहीं और न भागते हैं।
लिखते हैं कि बिहार के सीटू तिवारी, पश्चिम बंगाल के अमिताभ भट्टासाली, उड़ीसा से संदीप साहू, राजस्थान के नारायण वारेठ, मध्य प्रदेश से सुहेब नियाजी की रिपोर्टिंग कहां चली गई।
ये तो लगातार इनकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, लेकिन इन राज्यों में चुनाव नहीं हो रहे हैं तो चुनाव संबंधी रिपोर्ट वहां से नहीं आ रही है, लेकिन अगर कोई बड़ी खबर होती है तो हम कवर करते हैं।
और ये हैं शिव बालक सिंह, ग्राम पोस्ट झंडी, निघासन, तहसील जिला खीरी, उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं कि कभी गुजरात दंगों के हिंदू पीड़ितों की गिनती व दर्द उनकी व्यथा कथा को दिखाएं।
अभी हाल में ही गोधरा के जब 15 साल पूरे हुए, तो अगर आपने हमारी वेबसाइट पढ़ी होगी तो उसमें एक खबर थी कि गोधरा में क्या हुआ।
और अगली चिट्ठी है सुरेंद्रनाथ सिंह की, असम नागांव से। कहते हैं कि रामजस विवाद में बीबीसी ही एकमात्र ऐसी मीडिया रही जिन्होंने एकदम नपी तुली पत्रकारिता की, जिस पर यकीन किया जा सकता है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी यही कोशिश रहती है कि दोनों पक्ष आए किसी भी विवाद में और हम किसी का पक्ष ना लें। तो मुझे लगता है कि अभी चिट्ठियां, ईमेल तो बहुत सारी हैं इंदु जी, मैं अपने तमाम दूसरे श्रोताओं से क्षमा मांगूंगा, इस बार उनकी चिट्ठियां शामिल नहीं हो पाई, लेकिन अगली बार कोशिश करेंगे कि उनका नाम प्रसारित हो और उनकी चिट्ठियां, उनकी बात प्रसारित हो। चलते चलते पता नोट कर लीजिए, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और ईमेल लिखना चाहें तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब क्रिकेट। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी स्थिति थोड़ी मजबूत कर ली है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 213 रन जोड़ लिए हैं। इस तरह टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर 126 रनों की बढ़त बना ली है। एक रिपोर्ट के साथ वैभव दीवान।
भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ऑस्ट्रेलिया पर 126 रनों की बढ़त ले चुका है। भारत का स्कोर 213 रनों पर 4 विकेट। क्रीज पर मौजूद अजिंक्य रहाणे 40 और चेतेश्वर पुजारा 79 रनों पर नॉट आउट हैं। बेंगलुरु में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में आज सुबह ऑस्ट्रेलियाई टीम जब उतरी तो उनके पास 48 रनों की बढ़त थी। पहली पारी में दूसरे दिन के स्कोर 237 पर 6 को आगे बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 39 रन ही और जोड़ पाई और टीम का कुल स्कोर 276 बना, जिसका मतलब ये कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 87 रनों की लीड ली। गेंदबाजी में भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 63 रन देकर ऑस्ट्रेलिया की 6 विकेट चटकी। अश्विन को 2 सफलताएं मिली, ईशांत शर्मा और उमेश यादव को 1-1 विकेट। अब 87 रनों से पीछे दूसरी पारी में जब भारतीय टीम खेलने उतरी तो एक बार फिर सलामी जोड़ी लड़खड़ाई। अभिनव मुकुंद महज 16 रनों पर ही आउट होकर पवेलियन लौटे। दूसरे छोर पर खड़े सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने चेतेश्वर पुजारा के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी की नींव रखी, जो लंबी ना चल पाई और केएल राहुल अर्धशतक लगाते ही 51 रनों पर आउट हुए, जिसके बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली खेलने आए, जो इस पारी में भी सस्ते में निपटे। जॉश हेजलवुड ने कोहली को 15 रनों पर विकेट के सामने LBW आउट किया, जिसके बाद रविंद्र जडेजा को मौका दिया गया और वो सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर अब हुआ 120 पर 4। मैच में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी होने लगा। अब भेजा गया अजिंक्य रहाणे को, जिनका साथ निभाने के लिए सेट बैट्समैन चेतेश्वर पुजारा दूसरा छोर संभाले हुए थे। रहाणे ने काफी सूझबूझ भरी पारी की शुरुआत की, निरंतर स्ट्राइक रोटेट करते रहे, साथ ही चेतेश्वर पुजारा भी पिच पर अपने पांव जमाते दिखे। दोनों ने मिलकर दिन का खेल खत्म होने तक 93 रनों की साझेदारी की। पुजारा फिलहाल 79 रनों पर नाबाद हैं और अजिंक्य रहाणे 40 बनाकर नॉट आउट हैं। भारत का स्कोर आज का दिन खत्म होने तक दूसरी पारी में 213 रनों पर 4, यानी भारत के पास अब है 126 रनों की लीड। आज के दिन के तीसरे सेशन को देख के लगा कि इस मैच में भारत वापसी कर रहा है। इस बात पर क्या कहते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज मेमन?
बेशक वापसी तो हुई है, क्योंकि एक वक्त ऐसे था जब लगा जब चौथी विकेट गिरी कि शायद 200 रन बनना भी मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए, लेकिन यहां पर लीड हो गई है 126 की, तो अगर और 100 रन जोड़ लेते तो मेरे ख्याल से बहुत ही कंपेटिटिव स्कोर हो जाएगा। और हालांकि ऐसा लग रहा है कि पिच थोड़ी बेहतर खेल रही है, लेकिन फिर भी आखिरी पारी में 225-230 बनाना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए।
अब बेंगलुरु में कल सुबह शुरू होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन, जब भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की जोड़ी भारतीय टीम के 213 रनों के स्कोर को आगे बढ़ाएगी।
वैभव दीवान की रिपोर्ट। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर का प्रचार थम गया है। दोनों जगह 8 मार्च को मतदान होगा। दुनिया के कई देशों ने उत्तर कोरिया की ओर से किए गए 4 बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों की निंदा की है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस परीक्षण को बेहद खतरनाक कार्रवाई बताया है। उत्तर कोरिया ने जानकारी दी है कि वो मलेशिया के राजदूत को देश छोड़ने के लिए कह रहा है। इसके पहले उत्तर कोरिया के राजदूत ने मलेशिया की राजधानी को छोड़ दिया। बीबीसी समाचार।
दिनभर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।